आज है 4 अप्रैल दिन मंगलवार। स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। रूस में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर, सेंट पीटर्सबर्ग धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाके का संदिग्ध मध्य एशिया का रहने वाला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे कैबिनेट की पहली बैठक। क्या वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज होंगे माफ? और हिंदुस्तानी संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली किशोरी अमोनकर ने इस संसार को विदा कहा। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में सोमवार को मेट्रो में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। धमाके में 45 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये धमाका सेनाया प्लूचेड और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेट्रो स्टेशनों के बीच हुआ। धमाके के बाद ट्रेन में अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बन गया। ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला ने कहा कि धमाका इतना जोरदार था कि मानो कान के पर्दे फट जाएंगे। उस दौरान बहुत जोरदार धमाका हुआ, ये कान फोड़ने वाला था। मैं मेटल रेलिंग के पास बैठी थी और सोचती हूँ कि इसने ही मेरी जान बचाई। हर कोई दाई ओर गिरा, लेकिन अपनी सीट पर ही। ये थे नतालिया किरिलोवा के शब्द। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। रूसी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि संदिग्ध हमलावर की पहचान कर ली गई है। संदिग्ध 20 साल के आसपास का था और उसका संबंध मध्य एशिया से बताया जा रहा है। धमाके के वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सेंट पीटर्सबर्ग में ही मौजूद थे। पुतिन ने कहा है कि इस धमाके की आतंकवाद सहित सभी एंगल से जांच की जा रही है। बीबीसी समाचार। शास्त्रीय संगीत की मशहूर गायिका किशोरी अमोनकर का सोमवार देर रात निधन हो गया। वह 84 साल की थी। अमोनकर का जन्म 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में हुआ था। वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दिग्गज गायिकाओं में शुमार थीं। अमोनकर को साल 1987 में पद्म भूषण और साल 2002 में पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सिसी को पूर्ण समर्थन का वादा किया है। सिसी पिछले एक दशक में अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले मिस्र के पहले राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार मिस्र के साथ मिलकर तथाकथित इस्लामिक स्टेट से लड़ेगी। ट्रंप ने कहा कि सिसी ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया है। राष्ट्रपति अल-सिसी तब से मेरे बेहद करीबी हैं जब मैं पहली बार उनसे मिला था। हम कई मुद्दों पर साथ काम करने के लिए राजी हुए हैं। हम पूरी तरह से मिस्र और मिस्र के लोगों के साथ हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कोलंबिया में भारी बारिश और भूस्खलन में हुए जानोमाल के भारी नुकसान के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 262 पहुंच गया है। आपदा के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता लोगों की तलाश का काम जारी है। इराकी सेनाओं ने पश्चिम शहर मोसुल में आम नागरिकों को सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया है। इस शहर पर नियंत्रण के लिए इराकी सेनाओं और तथाकथित इस्लामिक स्टेट के बीच के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक मोसुल में लगभग 4 लाख लोग फंसे हुए हैं। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने दक्षिण अफ्रीका की क्रेडिट रेटिंग घटाकर जंक स्टेटस में डाल दी है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने ये कदम राष्ट्रपति जैकब जुमा के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें उन्होंने गुरुवार को प्रवीण गोवर्धन की वित्त मंत्री पद से विदाई कर दी थी। इस फैसले के बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए विदेशी बाजारों से कर्ज जुटाना कठिन हो सकता है। सीरिया स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी सेनाओं के हवाई हमलों में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तमाम देशों में हाल फिलहाल में छोटे बड़े कई चरमपंथी हमले हुए हैं, जबकि रूस बीते कुछ वर्षों से इस तरह के हमलों से अपने आप को बचाने में कामयाब रहा। लेकिन कल कहीं कोई चूक हुई और रूस की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लग गई। सेंट पीटर्सबर्ग में कल मेट्रो में जो धमाका हुआ, उस धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। लगभग 45 घायलों का इलाज जारी है। और इस बीच रूसी मीडिया के हवाले से ताज़ा खबर ये आई है कि धमाके का संदिग्ध मध्य एशिया का रहने वाला है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां इस हमले को विभत्स घटना माना है, वहीं यूरोपीय संघ ने कहा है कि सारा यूरोप रूस के लोगों के साथ खड़ा है। और रूस में कई ऐसे लोग हैं जो इस हमले को एक संदेश की तरह देख रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाले एक व्यक्ति कह रहे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की घटनाओं से न केवल रूस के लोगों को बल्कि सारी दुनिया को ये समझने में मदद मिलेगी कि हमें इंसान बने रहना होगा, हमें अपने भीतर इंसानियत को जगाना होगा ताकि हम एक दूसरे के साथ जंगली जानवरों की तरह बर्ताव ना करें। ये थे सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाले एक आम आदमी के शब्द। शहर में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई है। ये धमाका अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। मैंने मॉस्को में रहने वाले रूस भारत संवाद के अतिथि संपादक अनिल जनविजय को बीती रात फोन लगाया और उनसे सबसे पहले यही जानना चाहा कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो राष्ट्रपति पुतिन की होम सिटी है, उनका गृह नगर है, तो क्या धमाके के लिए इस शहर को चुने जाने की एक वजह ये भी हो सकती है?
मॉस्को में हमला इस वजह से करना बहुत मुश्किल है कि मॉस्को में चप्पे चप्पे पर जांच पड़ताल होती है और पुलिस हर जगह बहुत सतर्क रहती है, बहुत ध्यान से हर आदमी को चेक किया जाता है। इसलिए मॉस्को में मेट्रो में भी बम लेकर घुसना संभव नहीं है। तो मॉस्को में इस वजह से हमला नहीं किया। और मॉस्को के बाद दूसरा बड़ा शहर जो है वो पीटर्सबर्ग है, इसलिए पीटर्सबर्ग को चुना होगा।
धमाके के बाद पूरे रूस में कुछ बदला सा नजर आ रहा होगा। सुरक्षा के लिहाज से लोग धमाके के बाद डर गए होंगे जाहिर तौर पर। किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं धमाके के बाद?
ज्यादातर लोगों ने तो यही कहा कि हमें सीरिया जाने की क्या जरूरत थी, सीरिया से हमारा क्या लेना देना है, हमने सीरिया में हमला क्यों किया। और उक्रेना के बारे में भी लोगों का यही कहना है कि उक्रेना बर्बाद हो या जो भी हो, हमें उक्रेना से क्या मतलब है, हम उक्रेना को क्यों सपोर्ट करें और क्यों उसका विरोध करें। रूस ने जब से क्रीमिया को वापस लिया है, अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, खासकर तेल के दाम नीचे गए हैं। उसके बाद रूस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इस समय। रूसी लोग जो हैं वो ये मानकर चलते हैं कि हमें दूसरों की दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है, अगर हम लोग अपने लोगों पर कंसंट्रेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ये भी बताइए कि चेचन विद्रोहियों का इतिहास रहा है रूस में हमले करने के मामले में, और राजधानी मॉस्को में यदि मेरी जानकारी गलत नहीं है तो कम से कम 3 बड़े हमले चेचन विद्रोही कर चुके हैं मॉस्को में, और रूसी सरकार ने भी उन्हें दबाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या इस हमले के तार या इस हमले को चेचन विद्रोहियों के दोबारा सिर उठाने से जोड़ कर देखा जा सकता है? कुछ समझा जा सकता है कि चेचन विद्रोही दोबारा सक्रिय हो रहे हैं?
सिर्फ बात चेचेनिया की ही नहीं होनी चाहिए, बात दरअसल चेचेनिया के पास एक और राज्य है इंगुशेतिया नाम का, और इंगुशेतिया और चेचेनिया के पास दागिस्तान राज्य है। ये तीनों राज्य जो है वो आजकल गढ़ बने हुए हैं विद्रोहियों के या आतंकवादियों के, और आतंकवाद चेचेनिया में फिर से सक्रिय हो गया है। इसलिए ये संभावना हो सकती है कि दोबारा चेचेन आतंकवादियों ने ही ये कोशिश की हो कि रूस के ऊपर एक बार फिर आतंकवादी हमला किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि चेचेन भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन चेचेन आतंकवादियों के अलावा भी रूस में जो दागिस्तानी आतंकवादी हैं जिनके साथ सेना जो है लगभग प्रतिदिन किसी न किसी आतंकवादी को मारने की घोषणा की जाती है, तो ये जो आतंकवादी हैं ये अपने रूसी आतंकवादी भी हो सकते हैं।
सेंट पीटर्सबर्ग में हुए धमाके से जुड़े सवालों के संभावित जवाब ये थे मॉस्को में रूस भारत संवाद के अतिथि संपादक अनिल जनविजय।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
चलिए अब लौटते हैं भारत, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सरकार बनाने के बाद आज अपनी कैबिनेट की पहली बैठक करने वाले हैं। अब इस बैठक में क्या खास बात है? खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि उसकी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही किसानों पर जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल सुनते हैं लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 19 मार्च को शपथ ली और मुख्यमंत्री को अपने करीब 4 दर्जन मंत्रियों के साथ बैठक करने में पूरे 2 हफ्ते लग गए। आमतौर पर सरकार बनने के तुरंत बाद या फिर 1-2 दिन बाद कैबिनेट की बैठक हो जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ये बैठक 16वें दिन करने जा रही है। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र इसकी वजह बताते हैं।
एक्चुअली इस पर किसी निष्कर्ष पर जाने से पहले इनकी व्यवस्थाएं समझना बड़ा जरूरी होगा, बिना उसके किसी इनकी शैली का विश्लेषण उचित नहीं होगा। इनकी व्यवस्था ये है कि पहले कैबिनेट में उन घोषणाओं को करना है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने चुनाव के दौरान कहा, जैसे कर्ज माफी। फंड नहीं है उत्तर प्रदेश में, कर्ज माफी करना है, इसलिए पहली कैबिनेट इनकी लगातार विलंबित हुई। दूसरा, कैबिनेट के मंत्रियों से परिचय प्राप्त करने की औपचारिकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, एक ऐसी सामान्य बैठक कर चुके हैं।
दरअसल चुनाव से पहले न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहली बैठक में ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, बल्कि उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत सभी बड़े नेताओं ने अलग अलग सभाओं में ये बात दोहराई थी। यही नहीं, पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये वादा किया था। हालांकि पिछले दिनों संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के किसानों की कर्ज माफी को असंभव बताने संबंधी बयान पर लोगों को आशंका जरूर हुई थी, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इस वायदे को पूरा अवश्य करेगी, भले ही कुछ शर्तें लगा दे। फिलहाल सरकार ने इस बारे में कोई घोषणा या पहले से कोई जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात के संकेत जरूर दिए।
हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को लागू करने के लिए कटिबद्ध है और हमने सबसे प्रमुखता से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर के ये कहा था कि हम आएंगे तो किसानों के फसली ऋण को हम माफ करेंगे। सरकार उस पर बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और बहुत ही जल्दी उसके बारे में निर्णय होने वाला है, क्योंकि जब पहली मंत्रिपरिषद होगी तो उस मंत्रिपरिषद में ये तथ्य सामने आएंगे और उससे मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ किसान परिवारों को उसका फायदा पहुंचने वाला है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 5 बजे होनी है। राज्य के करीब 2 करोड़ किसानों के ऊपर करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पहली बैठक में हुई देरी को जानकार किसानों के हित में बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये देरी इसीलिए हुई है ताकि बिना केंद्र की मदद के भी राज्य सरकार कर्ज माफी का कोई रास्ता निकाल सके। माना जा रहा है कि आज की बैठक में किसानों की कर्ज माफी के अलावा अवैध बूचड़खानों के नियमन, मांस कारोबारियों के लाइसेंस से जुड़े मुद्दों, बुंदेलखंड के लिए कुछ विशेष राहत और पूर्वांचल के लिए किसी खास पैकेज या योजना पर भी फैसला हो सकता है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
तो बात हो रही है किसानों की। किसान कब सुर्खी बनता है? शायद तब जब वो आत्महत्या करता है, तब जब उसकी फसल खराब हो जाती है, तब जब उसका कर्ज माफ कर दिया जाता है। क्यों किसान के बारे में सरकार की तरफ से बस अक्सर यही सुनने को मिलता है कि किसान को इतना कर्ज दिया गया, उसका इतना कर्ज माफ कर दिया गया, कर दिया जाएगा। क्या भारतीय किसान सिर्फ कर्ज का पर्याय बनकर रह गया है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे सहयोगी निखिल रंजन ने किसान मामलों के जानकार और सर्वोदय अभियान से जुड़े कुमार प्रशांत से बात की।
जब हमारे राजनीतिज्ञ किसानों की बात करते हैं तो दरअसल वो किसानों की नहीं अपनी बात करते हैं, तो किसान तो कहीं उस विषय का पात्र ही नहीं है। किसानों की जिंदगी सुधारनी हो या भारतीय कृषि की अवस्था सुधारनी हो तो उसकी पहली और अनिवार्य शर्त है कि कर्ज की ये व्यवस्था तुरंत के तुरंत खत्म होनी चाहिए। कृषि का कोई ना कोई ऐसा रूप किसानों को और समाज को उभारना होगा जिसमें कर्ज की जरूरत न पड़ती हो। लेकिन जो तरीका खेती का, किसानी का, ये कैश क्रॉप के नाम से आने वाली फसलों का, जिस जगह की जमीन है उस जगह की प्रकृति के विपरीत फसलों को पैदा करवाने का तरीका विकास के नाम पर पूरे देश में चलाया जा रहा है, वो सिर्फ कर्ज के ईंधन से ही आगे बढ़ाया जा सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को बहुत महत्व का मानता नहीं हूँ कि इस बात की बहुत चर्चा की जाए कि ये जो एक रहस्य बना हुआ है कि आज और कल में सरकार क्या घोषणा करने वाली है और पहली बैठक में करती है या दूसरी बैठक में करती है, ये नाटक बहुत पुराना, घिसा पिटा और अर्थहीन हो चुका है। मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो एक बहुत बड़े पैमाने पर किसानों का कर्ज महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने माफ कर दिया था, जब विदर्भ में किसानों की आत्महत्या का सवाल लेकर हम लोग भी बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे और तब भी बड़ी वाहवाही हुई थी कि किसानों के लिए इतने बड़े पैमाने पर कर्ज माफी की गई है। उस कर्ज माफी में से ये निकला कि आत्महत्या की दर कम से कम दुगुनी हो गई है विदर्भ में। एक औसत में कहीं पढ़ रहा था कि प्रतिदिन 3 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरे राज्यों की बात अभी नहीं करता हूँ मैं, इसीलिए मैं इस आदमी को पहचानता हूँ।
इस वक्त क्या सबसे जरूरी है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है?
एक तो यह है कि जो समर्थन मूल्य अनाज का आप तय करते हैं वो आप तय न करें, जगह जगह किसानों की कोऑपरेटिव को ही तय करने दें। और दूसरा जरूरी काम है कि जो भी बाजार भाव तय होता है वो बाजार भाव पर फसल बाजार में बिके, इसको देखने की और इसको संभालने की व्यवस्था सरकार करे, दूसरा कोई रोल न करे। तो मैं मानता हूँ कि शायद तुरंत परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है।
भारत में जब भी बात होती है तो किसान हमेशा ही बहुत दीनहीन, दरिद्र और बड़ा बेचारा नजर आता है, तो वो स्थिति कैसे बदल सकती है?
किसानी का पूरा काम जो है वो इतना श्रम आधारित है, इतनी शरीर तोड़ श्रम की जरूरत पड़ती है उसमें, और दूसरी तरफ किसान को बहुत मदद पहुंचाने वाला जो पशुधन था हमारा वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। मशीनें उनकी जगह ले नहीं सकती हैं, ले नहीं पाई हैं, तब किसान के लिए सिर्फ अपना शरीर ही रह जाता है जो प्रकृति से भी लड़ता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी उसके नियम से चलती नहीं है और सरकार के द्वारा बनाई हुई तमाम व्यवस्थाएं जो उसके प्रतिकूल जा रही हैं वो उनसे भी लड़ता है। तो उसके दीनहीन होने, कमजोर होने, बेचारा होने, लाचार होने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है। बचा सिर्फ इतना ही है कि वो एक ऐसी चीज का उत्पादन करता है जिसके बगैर मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है, इसीलिए अभी तक हम उसको बर्दाश्त किए हुए हैं। तो अगर इसकी परिस्थिति को बदलना हो तो दो चीजें एकदम तुरंत ही जो मैंने आपसे कहा समझ में आती हैं कि उसकी मदद करने वाली व्यवस्थाएं तुरंत के तुरंत सोची जाएं, जिसलिए मैंने आपसे उस समर्थन मूल्य की बात कही कि समर्थन मूल्य का निर्धारण अगर किसान समितियों के हाथ में जाएगा तो थोड़े जोड़ने घटाने के बाद एक फॉर्मूला ऐसा बन सकता है जिससे किसान को तत्काल राहत हो सकती है। और दूसरा यह कि जो भी समर्थन मूल्य हो, बाजार का व्यापारी किसान की लाचारी का फायदा उठाकर उसको लाचार न करे कम दाम पर बेचने के लिए, ये देखने के लिए सरकार की व्यवस्था बाजार में खड़ी हो, तो शायद तत्काल कुछ रास्ता निकाला जा सकता है।
ये थे सर्वोदय अभियान से जुड़े कुमार प्रशांत, जो बता रहे थे भारतीय किसान की हालत कैसे बेहतर हो सकती है। आज है 4 अप्रैल, दिन मंगलवार। बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। भारत में समय हुआ इस वक्त सुबह के 6:48। चलिए अब आपको बताते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। दिनेश उप्रेती कई अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। जी,
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मेट्रो में हुए धमाके की खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अखबारों ने तस्वीरों के साथ इस खबर को प्रकाशित किया है। इसके अलावा लगभग सभी अंग्रेजी अखबारों ने नस्लभेदी हमलों पर अफ्रीकी राजनीतिकों की नाराजगी की खबर को भी बहुत प्रमुखता से छापा है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, नस्लभेदी हमलों पर भारत से नाराज अफ्रीकी डिप्लोमेट्स। 44 अफ्रीकी देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भारत में अपने नागरिकों पर हो रहे हमलों पर रोष जताया है। इंडियन एक्सप्रेस की ही एक और खबर का शीर्षक है, दलाई लामा आज अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे, तवांग अपने भगवान को देखने के लिए तैयार। खबर के साथ अखबार ने तवांग की सड़कों को वहां के लोगों द्वारा साफ करने की तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर है जिसके मुताबिक मोदी सरकार देश में रह रहे लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेज सकती है, बड़ी खबर है। अखबार ने सरकार के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये लोग पिछले 5 से 7 साल में भारत में अवैध रूप से घुसे थे और गिरफ्तारी के डर से देश के विभिन्न इलाकों में रह रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर तो सचमुच डराने वाली है।
क्या खबर है ऐसी?
अखबार लिखता है कि मौसम विभाग ने चेताया है कि गर्मी का असली रूप अभी आना बाकी है। दिल्ली में अप्रैल और जून के बीच तापमान सामान्य से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा, यानी आगे आगे देखिए होता है क्या। और अब एक खबर जिसे लेकर संदीप जी आप थोड़ा खुश हो सकते हैं।
आप भी खुश हो जाइए।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर कहती है कि कनॉट प्लेस में अगर आपका दफ्तर है तो आप खुद पर रस्क कर सकते हैं। खबर के मुताबिक कनॉट प्लेस महंगे दफ्तरों के मामले में दुनिया भर में 9वें नंबर पर है।
बधाई हो आपको।
और एक और फिल्मी दुनिया से खबर है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर कहती है कि तमिल स्टार सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2.0 मेक इन इंडिया मूवी है, यानी कि इसे चाहे लोकेशन की बात हो, क्रू हो या फिर स्पेशल इफेक्ट्स की बात, लगभग 350 करोड़ रुपए की मेगा बजट वाली ये फिल्म पूरी तरह से भारत में तैयार हुई है, यानी मेक इन इंडिया यहाँ तो कम से कम सक्सेस दिख रहा है।
अब वो तो देखने के बाद पता चलेगा उसमें कितना मेक इन इंडिया है। और खबरें हैं आपके पास? चलिए बहुत शुक्रिया, समाचार पत्रों की समीक्षा कर रहे थे दिनेश उप्रेती। और चलिए अब बात उस राज्य की जहां पर कुछ महिलाएं हैं जो अपनी पारंपरिक छवि को तोड़ते हुए कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो वहां इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। सुनिए हमारे सहयोगी आरजू आलम की जुबानी।
हरियाणा के रोहतक रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए कानों में औरतों की मध्यम पुकारें सुनाई दे रही थीं। बाहर निकलकर आया तो देखा कि चूड़ियों से भरे हाथ, होठों में लाली, सर में सिंदूर और गुलाबी समीज सलवार पहने लगभग हर उम्र की औरतें सवारियों के लिए आवाजें लगा रही हैं। यह गुलाबी ऑटो की ड्राइवर हैं जो पिछले 2 सालों से रोहतक में ऑटो रिक्शा चला रही हैं। रीना 12वीं पास हैं और पिछले 1 साल से ऑटो रिक्शा चला रही हैं।
प्राइवेट स्कूल है वहाँ सेक्टर 3 में, बड़ा स्कूल है, वहाँ सिक्योरिटी की नौकरी करती थी, 7,000 रुपये देते थे, पर वहाँ ज़्यादा लंबा टाइम था और फिर प्राइवेट नौकरी में तो ज़्यादा जिक काम नहीं करते, ये नहीं करते, बैठे रहे और बहुत ज़्यादा प्रेशर था, छुट्टी के लिए भी करते तो पैसे काट लिया करते, ये बात थी।
चटकीले गुलाबी रंग का साफ सुथरा ऑटो रिक्शा और गुलाबी यूनिफॉर्म में बेखौफ रिक्शा चलाती इन महिलाओं को देखकर सहसा दिमाग में यह बात आती है कि क्या यह वही हरियाणा है जहां घटते लिंगानुपात को लेकर चिंता जताई जाती है। ऐसे में रीना ने कैसे ऑटो रिक्शा चलाने की शुरुआत की वह बताती है।
डर लग रहा है की तो रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं ना चलाती, बोली कुछ ना सीख ले। फिर पड़ोस में तो और भी चलाना थी लेडीज, वहाँ जब ये अनपढ़ लुगाई भी चला लग रही है तो मैं तो फिर भी प्लस टू कर रही हूँ भाई, क्यों मैं तो वो आएगा जिसमें काइनेटिक साइकिल ये चला लिया करती, मैं भी चला लूँगी, मैं जब ये चला लग रही तो मेरे में कोई दिक्कत आ गई, फिर मैंने भी सीख ली।
ऑटो चलाने वाली औरतों में कई विधवाएं हैं तो कईयों के घर में कमाने वाली एकमात्र आदमी भी वही हैं। दिन भर में 300 से 400 रुपए तक कमाने वाली इन महिलाओं ने ऑटो लोन पे ले रखा है और हर महीने 7,000 रुपए EMI देती हैं।
गरीब औरतें हैं हम, यहाँ अपना गुजारा करने के लिए निकले थे घर से और ये चलाने लगी तो हौसला बढ़ता गया, एक दूसरी चलाती गई और भी आने की इच्छा है।
गुलाबी ऑटो चलाने वाली औरतों में कईयों की उम्र 45 वर्ष के ऊपर है तो कई 20 साल नवयुतियां भी हैं। अपने साफ सुथरे ड्राइविंग के कारण कई पुरुष भी इन महिलाओं के फैन हैं। एक ऐसे ही नियमित यात्री अपना अनुभव बताते हैं।
ऑटो में बैठना हमें तो अधिक अच्छा लगता है, क्यों? नंबर 1 इनके अंदर ऐब नहीं होता, कोई बीड़ी सिगरेट का धुआं नहीं फेंकते हैं, हमें नफरत है बीड़ी सिगरेट की धुआं से। दूसरा, सही तरीके से चलाते हैं, स्लो चलाते हैं, जहाँ कहते हैं वहाँ रोक देते हैं, उतार देते हैं सवारी को।
जाट बहुल हरियाणा खाप पंचायत और औरतों के प्रति परंपरावादी विचार के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में गुलाबी ऑटो में महिला चालकों के पीछे सुकून से बैठे हरियाणवी पुरुषों को देखकर बदलाव से गुजरते हरियाणा को महसूस किया जा सकता है। रोहतक से BBC हिंदी के लिए आरजू आलम।
भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में जब गायकी की बात होती है तो मेरे दिमाग में और शायद आपके ज्यादातर लोगों के दिमाग में दो नाम आते होंगे, पहला पंडित भीमसेन जोशी और दूसरा किशोरी अमोनकर। पंडित भीमसेन जोशी कुछ वर्ष पहले इस संसार से विदा ले चुके हैं और कल रात किशोरी अमोनकर भी चिर निंद्रा में लीन हो गई। 84 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, लेकिन ख्याल, ठुमरी और भजनों में उनकी आवाज इस संसार में सदैव उनकी मौजूदगी का एहसास कराती रहेगी। किशोरी अमोनकर जो अपने पीछे छोड़ गई हैं शास्त्रीय संगीत की एक अनमोल विरासत। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, अब से कुछ देर के बाद बीबीसी हिंदी के पन्ने पर आप कौन सी वो खबरें हैं जो पढ़ने वाले हैं। आज ही के दिन जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी के सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनकी 38वीं पुण्यतिथि पर एक विशेष आलेख आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूटल खानों के बाद मांस मछली और इस तरह की तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध सा लग गया था, लेकिन कानपुर में चिकन और मछली अब बहुत जल्द बिकने लगेंगे, मिलने लगेंगे। क्या है मामला, कैसे लाइसेंस के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं, आप ये खबर पढ़ सकते हैं। और अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना मुंबई की दीवारों पर क्यों टंगे से नज़र आ रहे हैं, कौन हैं जो इन सितारों की, बॉलीवुड के सितारों की मुंबई की इमारतों पर पेंटिंग बना रहा है। और एक और खबर, विक्रमशिला के खंडहरों से जो इतिहास झांक रहा है वो क्या है इतिहास। इसके अलावा एक ऐसे योग टीचर हैं जिनकी उम्र 100 साल से महज 2 साल कम है, लेकिन फिर भी योग के मामले में वो बड़े बड़ों को मात देती हैं इस उम्र में भी। ये सारी खबरें आप पढ़ पाएंगे bbchindi.com पर अब से कुछ ही देर के बाद। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में विदा लें, दिनेश उप्रेती से सुनेंगे एक बार फिर मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में सोमवार को मेट्रो में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। धमाके में 45 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये धमाका सेनाया, प्लूचेड और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेट्रो स्टेशनों के बीच हुआ। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। रूसी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि संदिग्ध हमलावर की पहचान कर ली गई है। संदिग्ध 20 साल के आसपास का था और उसका संबंध मध्य एशिया से बताया जा रहा है। शास्त्रीय संगीत की मशहूर गायिका किशोरी अमोनकर का सोमवार देर रात निधन हो गया। वह 84 साल की थी। अमोनकर को साल 1987 में पद्म भूषण और साल 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी को पूर्ण समर्थन का वादा किया है। सिसी पिछले एक दशक में अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले मिस्र के पहले राष्ट्रपति हैं। कोलंबिया में भारी बारिश और भूस्खलन में हुए जानमाल के भारी नुकसान के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 262 पहुंच गया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिनेश उप्रेती और स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। नमस्कार भारत में आज इतना ही। हमारा अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। तब तक पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com सदा है आपके साथ। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को विदा दें। नमस्कार।